بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتا متروں، آج کے کاریکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 154 سے 157 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری پرہیزگار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور جو لوگ ایشور کے مارگ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو جیوت ہیں پرندو تم میں سے سمجھ نہیں پاتے، اور نسندے ہم تھوڑے بھے، تھوڑی بھوک، کچھ جان مال اور اتپاد میں کمی سے تمہاری پریکشا لیں گے، اور ہے پیغمبر، آپ دھیروانوں کو شبھ سوچنا دے دیں جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ نسندے ہم ایشور ہی کے لیے ہیں اور اسی کی اور واپس جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پالنہار کی اور سے آشیرواد اور دیا ہے، اور یہی لوگ صحیح مارگ پر ہیں۔
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा. हमारे प्रसारण को आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं. दोस्तों हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi. दोस्तों आज बुधवार है, उर्दे बहिश्त माह की 20, शव्वाल की 19 और मई की 10 तारीख. हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है. सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा. राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम आशा की किरण और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल. तो दोस्तों ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे. अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश. राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले की पैरवी जारी रहेगी. फिलिस्तीनी और इसराइल के बीच तनाव में तेजी आ गई है. भारत के कर्नाटक राज्य का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कई क्षेत्रों में अशांति जारी है. और अब आप मरियम मेहरदादी और अख्तर रिजवी से विस्तार से समाचार सुनिए.
इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति ने एक बार फिर शहीद जनरल कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी अल मुहंदिस की हत्या के मामले की पैरवी करने और उसके परिणाम तक पहुंचने पर बल दिया है. राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी ने तेहरान में आए इराक की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के प्रमुख फायक जीदान से मुलाकात की. इस मुलाकात में फायक जीदान ने ईरान और इराक के उक्त दोनों शहीद कमांडरों की हत्या के मामले की पैरवी में अपने देश के प्रयासों और कार्रवाइयों से राष्ट्रपति रईसी को अवगत कराया. राष्ट्रपति इस मामले में न्याय की स्थापना और उसकी तेज प्रक्रिया पर बल देते हुए कहा कि इस मामले की परिणाम की प्राप्ति तक पैरवी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि तेहरान और बगदाद ऐसे लोगों के साथ किसी भी समझौते को नहीं मानेंगे जो खुद को हर प्रकार के वचनों और प्रतिबद्धताओं से ऊपर समझते हैं. राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी ने साथ ही दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार और हो चुके समझौतों को व्यवहारिक बनाने पर भी बल दिया. दूसरी ओर इराक की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के प्रमुख फायक जीदान ने संसद सभापति मोहम्मद बाकर कालीबाव से मुलाकात की. इस्लामी गणतंत्र ईरान के संसद सभापति और इराक की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के प्रमुख ने आपसी रुचि के मुद्दों पर विचार विमर्श किया.
IRGC के सीनियर कमांडर ने पश्चिमी एशिया में पैदा होने वाली स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा कि बड़ी घटनाएं और परिवर्तन होने वाले हैं और क्षेत्रों में दोबारा सत्य का सूरज निकलेगा. IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि ज़ायनी जो कुछ महीने पहले पागलपन में ग्रस्त थे अब दंग रह गए हैं क्योंकि अवैध अधिकृत क्षेत्रों में प्रतिदिन 30 से अधिक शस्त्र कार्रवाइयाँ हो रही हैं. हुसैन सलामी का कहना था कि पश्चिमी ये समझ चुका है कि सिस्टम द्वारा युद्ध नहीं जीते जाते, और यही कारण है कि पश्चिम सांस्कृतिक हमले द्वारा और आर्थिक नाकाबंदी, आतंकवाद, विध्वंसक कार्रवाइयों, असुरक्षा के मामलों को पैदा करके और प्रॉक्सी वॉर के दायरे को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ताकि इस प्रकार ईरानी राष्ट्र पर दबाव डाला जा सके। उन्होंने ये बात बल देकर कही कि कोई भी सेना इन साजिशों में से किसी एक का भी मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन इस्लामी गणतंत्र ईरान ने अब तक इन सारी साजिशों का डटकर मुकाबला किया और अपने झंडे को ऊंचा रखा।
इसराइली सेना ने बुधवार की सुबह वेस्ट बैंक के कबातिया शहर पर हमला करके दो फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया। वहीं बैतुल मुकद्दस के एसावी इलाके में इसराइली सेना और फिलिस्तीनी जवानों के बीच झड़पें हुई। उधर जिहाद इस्लामी संगठन की सैन्य शाखा कुद्स ब्रिगेड ने कहा है कि सवा फतह इलाके में जैन सैनिकों की आपराधिक हरकतों के जवाब में उन पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसके जद में कई इसराइली सैनिक आए हैं। बुधवार की सुबह वेस्ट बैंक के तुबास में इसराइली सैनिकों और फिलिस्तीनी जवानों के बीच झड़पें हुई और कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रामल्ला में यहूदी बस्तियों के निवासियों ने फिलिस्तीनियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 फिलिस्तीनी घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय फिलिस्तीनियों ने जायनियों पर पथराव किया और उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया।
इसराइली सैनिकों ने एक चेक पोस्ट के करीब एक लड़की को गोली मार कर ढेर कर दिया, जिसके बारे में ये पता चला कि वो इसराइली लड़की थी जो अरब लड़कियों जैसा लिबास पहने हुई थी। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसराइली किशोरी मनोरोगी थी और उसने अरब लड़कियों जैसा अपना हुलिया बना रखा था और इसराइली सेना के चेक पोस्ट के करीब गई थी, जिसे इसराइली सैनिकों ने फिलिस्तीनी हमलावर समझ कर गोली मार दी। मंगलवार को इसराइली सेना ने एक बयान में दावा किया था कि अल खलील नगर के करीब एक चेक पोस्ट पर एक फिलिस्तीनी किशोरी को हमला करने से पहले मार गिराया था।
अरब लीग में सीरिया की 12 साल बाद शानदार और प्रतिष्ठापूर्ण वापसी अमेरिका को रास नहीं आ रही है। अमेरिका ने इस मामले में किसी जानबी लीग की हरकतों जैसा बयान देते हुए कहा है कि बशार असद संबंध बहाल किए जाने के हकदार न थे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने अरब लीग के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि इस समय सीरिया को अरब लीग में दोबारा शामिल होने का हक है। कायरा में अरब देशों की बैठक में यह फैसला किया गया कि संगठन में स्थगित चल रही सीरिया की सदस्यता बहाल कर दी जाए। अरब लीग के अधिकारियों ने कहा कि अब से अरब लीग की सारी बैठकों में सीरिया का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा।
कर्नाटक में छिटपुट हिंसा के बीच विधानसभा की 224 सीटों के लिए बुधवार को मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 65.58% वोटिंग रिकॉर्डिंग की गई। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक में एक बार फिर किंग मेकर बनकर उभरेगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राज्य में मतदान के दौरान कम से कम 3 जगहों से हिंसक घटनाओं की सूचना मिली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को जारी मतदान के दौरान कम से कम 3 जगहों से हिंसक घटनाओं की सूचना मिली। विजयपुरा जिले के बसवाना बागेवाड़ी तालुक के मसाबिनल गांव में अधिकारियों द्वारा ईवीएम और वीवीपीएटी को बदले जाने की अफवाह फैलने के बाद कई गुस्साए ग्रामीणों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वीवीपैट मशीनों को नष्ट कर दिया और मतदान अधिकारियों के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक मुस्लिम महिला से सामूहिक बलात्कार के मामले में मुजफ्फरनगर की एक निचली अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में शिकायतकर्ता के लिए ऐसी महिला है जो दंगों के दौरान हुए बलात्कार के आरोपों को लेकर अदालत में मुकदमा लड़ती रही। नवभारत टाइम के अनुसार अदालत ने सामूहिक बलात्कार के 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सुप्रीम कोर्ट के मणिपुर में जान माल के नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त करते ही राज्य की भाजपा सरकार ने कहा कि अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद से मौतों का ये पहला आधिकारिक आंकड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हिंसा में 60 लोग मारे गए हैं, 231 घायल हुए हैं और धार्मिक स्थलों समेत 1,700 घर जला दिए गए हैं।
भारत के केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री सतपाल सिंह बघेल ने कहा है कि बहुत कम सहिष्णु मुसलमान हैं, यहाँ तक कि जो सहिष्णु दिखाई देते हैं वे भी एक मास्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ऐसा सिर्फ सार्वजनिक जीवन में बने रहने और उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल आदि बनने के लिए करते हैं।
پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری پر بھاری بوال مچا ہوا ہے. پورے دیش میں پردرشن اور ہڑتالوں کا سلسلہ ہے. پورو پردھان منتری عمران خان کو منگلوار کے دن گرفتار کیا گیا تھا اور نیب کے ستروں کا کہنا ہے کہ انہیں 4 سے 5 دن ریمانڈ میں رکھا جا سکتا ہے. آج انہیں نیب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا.
پاکستان میں ہو رہے ہنسک پردرشنوں کے دوران 3 لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے. امریکی جیورے نے پورو راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کو لیکھکا جین کیرول کے یون شوشن کا دوشی قرار دیا ہے.
چین نے کینیڈا کی اور سے چینی کوٹنائک کو دیش سے نکالے جانے کی پرتکریا میں شنگھائی میں تعینات کینیڈائی کوٹنائک جینیفر لولونڈیو کو دیش سے نکالنے کا اعلان کیا ہے. AFP کی رپورٹ کے انوسار بیجنگ میں چینی ودیش منترالے نے آن لائن پرکاشت والے ایک انگریزی بیان میں کینیڈا کے کوٹنائک کو اپریہ تتو گھوشت کرتے ہوئے کہا کہ چین کے پاس ابھی اور پرتکریا کا ادھیکار سرکشت ہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے.
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
دوستو, راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم لے کر اپستھت ہیں قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے. فلسطینیوں کے ورد بڑھتے زائونی حملے, عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان میں بوال اور کرناٹکا میں ودھان سبھا کے چناؤ, ان وشیوں کو دوستو ہم کارکرم میں شامل کریں گے. زائونی سینا نے فلسطینیوں کے ورد نئی کاروائی آرمبھ کی ہے. وستار سے بتا رہے ہیں احمد عباس.
زائونی شاسن نے اپنے اپرادھوں کی لمبی سوچی کو اور لمبا کرتے ہوئے غزہ پٹی پر جنونی حملے کیے, جس میں جہاد اسلامی سنگٹھن کے 3 کمانڈروں سہت 13 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں میں 4 بچے اور 6 مہیلائیں شامل تھیں, جبکہ جہاد اسلامی کی سینک شاخہ قدس بریگیڈ کے 3 کمانڈر بھی اس حملے میں شہید ہو گئے. فلسطینی سنگٹھنوں کی سنیکت کمان نے اسرائیل کے منگلوار کے حملے کو قاہرانہ حرکت قرار دیا ہے. موت کا یہ تانڈو اسرائیلی سینا اور ہوم لینڈ سیکیورٹی ایجنسی کے آپسی سہیوگ سے ہوا, اور اس کے لیے 40 یدھک ویمانوں کو استعمال کیا گیا. اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ جن کمانڈروں کو شہید کیا گیا ہے انہوں نے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ حملے کا آدیش جاری کیا تھا. یہ حملے تب ہوئے ہیں جب پچھلے 18 ہفتوں سے اسرائیلی پردھان منتری بنیامن نیتن یاہو کے خلاف بڑے پیمانے پر پردرشن ہو رہے ہیں اور بنیامن نیتن یاہو کے منتری منڈل میں گہرے متبھید دیکھنے میں آ رہے ہیں. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے منتری بن غفیر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کی سرکار غزہ پٹی پر حملوں کے معاملے میں کمزور قدم اٹھا رہی ہے, اسی لیے انہوں نے منتری منڈل کی بیٹھک میں شامل ہونا چھوڑ دیا ہے. میڈیا رپورٹ بتاتی ہے کہ منگلوار کے حملے کے بعد بن غفیر نے منتری منڈل کی بیٹھک میں حصہ لیا. اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ حملے اسرائیل کے آنترک متبھیدوں کو دور کرنے کی کوشش ہے, جس میں اسرائیل نے 13 فلسطینیوں کی جان لے لی. مہتوپورن وشے یہ ہے کہ نیتن یاہو کی کیبنٹ نے بہت پہلے فلسطینی کمانڈروں کی ٹارگٹ کلنگ کی بات کہی تھی. نیتن یاہو کی سرکار, جسے اسرائیلیوں کی اور سے بھاری ورودھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, فلسطینیوں کے خلاف اس پرکار کی نیتیوں پر عمل کر رہی ہے کہ ان کا پرتیرودھ لگاتار مضبوط ہو رہا ہے اور وہ جوابی حملے کر رہے ہیں. اس بیچ اسرائیلی سرکار نے ٹارگٹ کلنگ کی یوجنا پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. اسرائیل کے چینل 13 نے بتایا کہ نیتن یاہو سرکار نے اپنے منتری منڈل سے کہا ہے کہ اس نے ٹارگٹ کلنگ کی نیتی کو دوبارہ اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا ہے. مگر فلسطینی سنگٹھنوں نے جو اسٹینڈ لیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ انہیں اسرائیل کی آتنکی حرکتوں کا کوئی ڈر نہیں ہے, بلکہ اس سے ان کا ارادہ और प्रतिरोध अधिक मजबूत हो रहा है। हमास संगठन के नेता मूसा अबू मरजूक ने कहा कि शहीदों का खून फिलिस्तीन की आजादी का रास्ता समतल करेगा और टारगेट किलिंग से ये जाहिर है कि फिलिस्तीनी संगठन बिल्कुल सही रास्ते पर आगे जा रहे हैं। हमास के नेता इस्माइल हनिया ने भी कहा कि हमारे कमांडरों को शहीद करके ज़ायोनी शासन खुद को सुरक्षित नहीं बना सकता, हमारा रेजिस्टेंस और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन को खमियाजा भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसराइल को भी यकीन है कि फिलिस्तीनी संगठनों की तरफ से जवाबी कार्यवाही जरूर की जाएगी, इसीलिए इसराइली अधिकारियों ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो पूरी तरह से अलर्ट रहे और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक सड़कों पर निकल आए हैं। ब्यूरो के साथ हाजिर है मोहम्मद मेहदी।
श्रोताओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से इमरान खान को गिरफ्तार किया। इमरान खान की गिरफ्तारी अल कादिर ट्रस्ट केस में हुई है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से पूरे पाकिस्तान में काफी बवाल मचा हुआ है और उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत सी जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर सैकड़ों नहरों की भूमि के कथित लाभ के लिए एक जांच शुरू हुई थी, जिसमें कथित तौर पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचा था। स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी संगठन NAB के निर्देश पर पूर्व प्रधानमंत्री को मंगलवार को रेंजर्स ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में हिरासत में लिया था। उसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए रावलपिंडी के गैरी सन शहर के मुख्यालय में ले जाया गया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिरासत वैध थी और इसके बारे में उसने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। इमरान खान की पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। कल गिरफ्तारी के वक्त इमरान खान के सिर पर चोट लगी थी। इमरान खान की टांग पर डंडे मारे गए थे, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। सूचना के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में आगजनी और लूटपाट की घटनाएं यथावत जारी हैं। कई शहरों में रात भी PTI के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन करते रहे। इन प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में PTI के 4 कार्यकर्ताओं की मौत की भी सूचना है। पाकिस्तान के राजनीतिक मामलों के एक विशेषज्ञ अहमद मंसूर खान कहते हैं कि इस समय पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि वो नए राजनीतिक संकट का सामना कर सके। प्रतीत यह हो रहा है कि पाकिस्तान की 2 महत्वपूर्ण पार्टियां यानी मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सबसे बड़ी चुनावी प्रतिस्पर्धी पार्टी तहरीक इंसाफ को चुनावी मैदान से हटाना चाहती हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को इमरान खान की अध्यक्षता वाली पार्टी से चुनाव हार जाने की आशंका बनी हुई है और इसी खतरे को दूर करने के लिए वे इमरान खान को किसी न किसी मामले में फंसा देना चाहती हैं और उनके कार्यों का क्या परिणाम होगा इस पर वे ध्यान नहीं दे रही हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि इस समय पाकिस्तान को जिन समस्याओं और चुनौतियों का सामना है उनके समाधान के लिए राष्ट्रीय एकता व एकजुटता की जरूरत है। इस बीच कुछ अन्य राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तहरीक इंसाफ पार्टी पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली पार्टी है और सेना की मदद से इमरान खान सत्ता में पहुंचे और इस देश का प्रधानमंत्री बने थे, परंतु उन्होंने सेना और इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ जो बयान दिए हैं उससे इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे सेना या प्रधानमंत्री का हाथ नहीं है। और साथ ही ये बात भी पूरे विश्वास से नहीं कही जा सकती कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे प्रधानमंत्री या सेना का हाथ है, किंतु प्रतीत यह हो रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तानी सेना के इशारे पर हुई है और इसका मूल लक्ष्य इमरान खान की छवि को खराब करना और सत्ता में उन्हें दोबारा पहुंचने से रोकना है। इस मध्य कुछ अन्य राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पाकिस्तान में जारी संकट का कोई तार्किक समाधान शीघ्र न किया गया तो वहां की राजनीतिक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और ये वो चीज होगी जो पाकिस्तान की किसी भी पार्टी के हित में न होगी और वहां जारी अशांति की घटनाओं के दौरान आतंकवादियों को भी अपनी विनाशकारी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए बेहतरीन अवसर मिल जाएगा और इन कार्रवाइयों को इमरान खान के समर्थकों के खाते में डाल दिया जाएगा। सारांश ये कि पाकिस्तान के राजनीतिक संकट का शीघ्र और तार्किक समाधान न केवल पाकिस्तान के हित में होगा बल्कि पड़ोसी देशों के भी हित में होगा।
तो दोस्तों अब हम रुख करते हैं भारत का। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दिल्ली से शमशाद काजमी की रिपोर्ट।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज एक ही चरण में शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सुबह 7 बजे आरंभ हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहा। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए 2615 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2430 पुरुष और 184 महिला उम्मीदवार हैं। राज्य में 5.3 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। बताया जाता है कि कर्नाटक में मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया और मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी पंक्तियों में लोग खड़े दिखाई दिए। इस चुनाव में विकास और भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया हुआ है। कर्नाटक में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के बीच त्रिपक्षीय मुकाबला है। कर्नाटक में इस समय सरकार विरोधी लहर है, लेकिन सत्ताधारी भाजपा नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज अपना वोट डाला और मतदान केंद्र के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि वे रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे और कर्नाटक के लोग सकारात्मक विकास के लिए मतदान करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम आराम से बहुमत के साथ वापसी करेंगे। कांग्रेस का भी दावा है कि कर्नाटक की अगली सरकार उसी की होगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता सिद्धरमैया ने मतदान के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस को 130 से अधिक सीटें मिलेंगी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी दावा किया है कि इन चुनावों में कांग्रेस 141 सीटें प्राप्त करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उधर जनता दल एस का दावा है कि वह इन चुनावों में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने भाजपा सहित सभी पार्टियों को दोष देते हुए कहा कि हर बार हम निष्पक्ष चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन कागज में ही इसकी घोषणा रह जाती है, जमीनी हकीकत अलग होती है।
नॉट ओनली बीजेपी पार्टी, आई विल नॉट ब्लेम ओनली बीजेपी, द सिस्टम इज लाइक दैट। वी हैव एनकरेज्ड एवरीबॉडी एवरी टाइम वी डिस्कस अबाउट द फेयर इलेक्शन, बट ओनली ऑन पेपर्स, ऑलवेज दिस फेयर इलेक्शन विल बी।
ज्ञात रहे कि 2018 में बहुमत सिद्ध न करने के कारण बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार गिर गई थी, जिसके बाद कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार बनी और एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 14 महीने के बाद कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों की बगावत के बाद कुमारस्वामी को त्याग पत्र देना पड़ा। बीएस येदियुरप्पा दोनों दलों के विधायकों को भाजपा के साथ लाने में सफल रहे और 26 जुलाई 2019 को 119 विधायकों के समर्थन से वे फिर मुख्यमंत्री बने। दो साल के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद भाजपा ने बसवराज बोमई को मुख्यमंत्री बनाया। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम आशा की किरण।
आशा की किरण।
दोस्तों, कार्यक्रम आशा की किरण के करने कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है हमारा ये प्रयास भी आपको पसंद आएगा। मरियम मेर दादी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि महान ईश्वर ने 124,000 पैगंबर और 12 इमाम भेजे। इन सब का उद्देश्य समाज में न्याय स्थापित करना था। महामुक्तिदाता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरी दुनिया में न्याय स्थापित करना और समाज से अज्ञानता का अंधकार मिटाना है और समाज को विकास के शिखर पर पहुंचाना है। दूसरे शब्दों में, जब तक समाज में अज्ञानता का अंधेरा छाया रहेगा, तब तक इंसान विकास के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। महामुक्तिदाता के काल में इंसानियत कमाल का शिखर तय करेगी और कमाल व परिपूर्णता का रास्ता तय करने के लिए अज्ञानता को मिटाना बहुत जरूरी है। अज्ञानता के अंधकार में डूबा समाज और संसार कभी भी परिपूर्णता का मार्ग तय नहीं कर सकता। जो इंसान विकास की चोटियों को सर करना चाहता है, उसे अपने मार्ग की रुकावटों को भी दूर करना चाहिए। इस मार्ग की एक बहुत बड़ी रुकावट अज्ञानता है।
जो इंसान महामुक्तिदाता का सच्चा अनुयायी बनना चाहता है, उसे चाहिए कि सबसे पहले अपने अंदर से अज्ञानता के अंधकार को मिटाए और उसके बाद दूसरों के अंदर से अज्ञानता को खत्म करने के लिए प्रयास करे। पैगंबर इस्लाम की मशहूर हदीस है कि ज्ञान हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। यानी जिस तरह से ज्ञान हासिल करना मुसलमान मर्द पर अनिवार्य है, उसी तरह मुसलमान महिला पर भी ज्ञान अर्जित करना वाजिब है। ज्ञान हासिल करने पर जितना बल इस्लाम में दिया गया है, उतना किसी भी धर्म में नहीं दिया गया है। ज्ञान वो चिराग है जिससे अंधकार को मिटाया जा सकता है। ज्ञान के बिना अज्ञानता के अंधकार को नहीं मिटाया जा सकता। महामुक्तिदाता के काल में जिस तरह चारों ओर न्याय और शांति होगी, उसी तरह चारों ओर ज्ञान का प्रकाश होगा। संसार का कोई कोना नहीं होगा जहां अज्ञानता का अंधकार होगा।
कोई ये सवाल कर सकता है कि इस्लाम में ज्ञान हासिल करने पर इतना अधिक बल दिए जाने के बावजूद बहुत से मुसलमान आज भी जाहिल क्यों हैं? उसका जवाब बहुत ही आसान है। जो मुसलमान भी अज्ञानी है, उसकी वजह यह है कि उसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल नहीं किया। आज बहुत सी समस्याओं की जड़ अज्ञानता है और आज अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर या कोई समाज किसी दूसरे समाज पर शासन कर रहा है, तो उसकी वजह केवल ज्ञान ही है।
हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज्ञान वो खजाना है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। ज्ञान इंसान को मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। ज्ञान बुद्धि का चिराग है। चिराग या रोशनी की सबसे स्पष्ट विशेषता यह है कि वो जहाँ भी होता है, वहाँ चीज़ें आसानी से देखी जा सकती है। जिस तरह किसी चीज को देखने के लिए नेत्र जरूरी है, उसी तरह अज्ञानता को मिटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश जरूरी है।
आशा की किरण। मानवता के मोक्षदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर सटीक बहस पर आधारित कार्यक्रम आशा की किरण। हर हफ्ते बुधवार को।
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी नेमत बुद्धि है और सबसे बड़ी मुसीबत अज्ञानता है। इस हदीस की रोशनी में भौतिक चीज़ों का होना अच्छी बात है और वे भी महान ईश्वर की नेमतें हैं, परंतु अगर किसी इंसान के पास बुद्धि नहीं है तो उसकी वो कीमत नहीं होगी जो एक बुद्धिमान इंसान की होती है। हर इंसान की कीमत उसमें मौजूद अच्छाइयों के अनुसार होती है। आज दुनिया में जितनी प्रगति देखी जा रही है, ये सब बुद्धि के प्रयोग का ही नतीजा है। आज मोबाइल, वाहन, हवाई जहाज आदि सब के सब इंसान की बुद्धि और उसके ज्ञान का ही नतीजा हैं। दूसरे शब्दों में ये ज्ञान का प्रकाश है जिसने मानव समाज को प्रकाशित कर रखा है।
इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने अज्ञानता को सबसे बड़ी मुसीबत कहा है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से उसे परेशानियों का सामना है तो ये समस्या वो मुसीबत है परंतु सबसे बड़ी मुसीबत नहीं है, मगर अगर अज्ञानता है तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अज्ञानता हर मुसीबत की जड़ है। अज्ञानी इंसान कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले सकता, मगर अगर इंसान ज्ञानी है और गरीब भी हो तब भी जीवन का आनंद ले सकता है। वो ज्ञान के कारण न केवल अपनी बल्कि समाज के दूसरे लोगों की भी बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकता है।
ज्ञान प्रकाश है और अज्ञानता अंधेरा है। हर इंसान रोशनी में रहना पसंद करता है, कोई भी इंसान अंधेरे में रहना पसंद नहीं करता। जो इंसान और उसका परिवार अंधेरे में रहेगा उसे नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना होगा। अगर कोई इंसान अपनी और अपने परिवार तथा समाज की भलाई चाहता है तो उसको चाहिए कि वो ज्ञान हासिल करे। ज्ञान भलाई की कुंजी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज्ञान खर्च करने से बढ़ता है जबकि माल खर्च करने से कम होता है। माल को चुराया जा सकता है परंतु इमाम फरमाते हैं कि ज्ञान को कभी भी चुराया नहीं जा सकता।
हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि साहिब माल माल की रक्षा करता है जबकि ज्ञान साहिब ज्ञान की रक्षा करता है। पवित्र कुरान कहता है कि क्या जानने और न जानने वाले बराबर हैं। नेत्र और ज्ञान में एक अंतर यह है कि नेत्र केवल भौतिक चीज़ों को ही देख सकती है जबकि ज्ञान के जरिए उन बातों को समझा जा सकता है जिन्हें नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। अगर कोई इंसान जन्म सिद्ध अंधा है तो दुनिया का कोई भी इंसान उसे देखने वाला नहीं बना सकता, जबकि नेत्रहीन इंसान को ज्ञानी बनाया जा सकता है और अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए आँखों का होना ज़रूरी नहीं है। सारांश ये कि जो इंसान महामुक्तिदाता की मदद करना चाहता है कि उस पर कृपा दृष्टि हो जाए तो उसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए।
ज्ञान इंसान के अंदर अंतर्दृष्टि पैदा करता है। जो इंसान वास्तविक अर्थों में ज्ञानी होगा वो कभी भी महामुक्तिदाता के अस्तित्व का इनकार नहीं कर सकता। आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो महामुक्तिदाता के अस्तित्व का इनकार करते हैं। जो लोग इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के अस्तित्व का इनकार करते हैं उनके गुमराह होने के बारे में कोई संदेह नहीं है। इस बारे में पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं, इमाम मेहदी की गैबत इस प्रकार की होगी कि लोग अपने धर्म से गुमराह हो जाएंगे। اسی سمبندھ میں امام محمد باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ قائم کی موت ہو گئی اور گیات نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، اور جو اس کی پرتیکشا میں ہوگا وہ یہ کہے گا کہ مہا مکتی داتا کب آندولن کریں گے۔
اس پرکار کی پتبرج باتیں اسی حالت میں کی جائیں گی جب پیغمبر اسلام نے سپشٹ شبدوں میں فرمایا ہے کہ جو بھی قائم کی غیبت کے زمانے میں غیبت کا انکار کرے اور اسی حالت میں وہ مر جائے تو اس کی موت اجانتا کے کال کی موت ہوگی، یعنی اسلام سے پہلے کفر کی موت ہوگی۔ اسی پرکار امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مہانیشور جب تک چاہے گا اسے پردے یہ غیب میں رکھے گا۔ پیغمبر اسلام اور ان کے پوتر پریجنوں کے حوالے سے جو کتھن اور روایتیں آئی ہیں ان میں مہا مکتی داتا کے ظہور کا سمے نردھارت نہیں کیا گیا ہے، اور جو ویکتی امام کے ظہور کا سمے نیت کرے وہ جھوٹا ہے، اور اس پرکار کے ویکتی کو حدیثوں میں جھوٹا کہا گیا ہے۔
دوستوں، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، پرنتو ظہور کا نیت سمے کیول مہان ایشور کو ہی گیات ہے۔ اسی کارن امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ امام کے ظہور کے لیے سمے نردھارت کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ سارانش یہ ہے کہ مہا مکتی داتا کے ظہور کا سمے اسپشٹ نہیں ہے اور اس کا گیان کیول مہان ایشور کو ہی ہے۔ مہا مکتی داتا کے ظہور کے سمے کے اسپشٹ نہ ہونے کے بہت سے لابھ بھی ہیں۔ ایک لابھ لوگوں میں پرتیرودھ کی بھاونا پیدا ہونا ہے۔ اگر مہا مکتی داتا کے ظہور کا سمے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو وہ ان کے ظہور سے پہلے کسی پرکار کا پرتیرودھ ہی نہ کرتے اور نہ ہی اپنے سماج کے سدھار کے لیے کوششیں کرتے۔
اسی پرکار اگر ظہور کا سمے معلوم ہوتا اور کسی وجہ سے اس میں دیری ہو جاتی تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایشوریہ وعدے کے پرتی نانا پرکار کی بھرانتیاں آتیں اور کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے، جس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہونے والی گھٹنا کو اس طرح بیان کرتے ہیں، جب جناب موسیٰ ایشوریہ سندیش لانے کے لیے تور نامک پروت پر گئے اور اپنی قوم سے 30 دن کا وعدہ کیا اور بعد میں اس میں 10 دن کی اور وردھی ہو گئی تو جناب موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔
اسی پرکار ایک انیہ ستھان پر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی انتیم سرکار ہوگی، کوئی ایسا پریوار نہیں ہوگا جو ہم سے پہلے سرکار نہ کر چکا ہوگا، تاکہ جب وہ ہماری سرکار کرنے کا اندازہ دیکھیں گے تو یہ نہ کہیں گے کہ کاش اگر ہمیں سرکار ملتی تو ہم بھی ان کے جیسی سرکار کرتے۔ مہانیشور نے پوتر قرآن کے سورہ قصص کی آیت سنکھیا 83 میں کہا ہے کہ ہمارے نیک بندے زمین پر ہمارے پرتندھی بنیں گے۔ اس پرکار انت میں انسان اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ جتنی بھی سرکاریں گزر چکی ہیں وہ نہ کیول ہمارے ہت میں نہیں تھیں بلکہ ہمارے لیے سب ہانیکارک تھیں۔ لوک پر لوک کا کلیان ایشور کے نیک بندوں کی سرکار میں ہی نہت ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ایشوری آدیشوں پر عمل کرنے میں لوک پر لوک کا کلیان نہت ہے، اسی طرح اس سرکار کی استھاپنا اور اس کے انوسرن میں لوک پر لوک کا کلیان نہت ہے جس کا آدھار مہانیشور کے آدیشوں میں ہے۔
یہاں ایک بندو کا الیکھ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو مہا مکتی داتا کے جلد سے جلد ظہور کے لیے دعا کرنا چاہیے، پر اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ مہا مکتی داتا مہانیشور کی اچھا سے پردے غیب میں ہیں، اور اس بات میں کوئی سندیہ نہیں ہے کہ اس میں حکمت ہے۔ اسی طرح انسان کو اس بات پر بھی پوری آستھا رکھنی چاہیے کہ اگر مہا مکتی داتا کے ظہور میں ولمب ہو رہا ہے تو اوشیہ اس میں کوئی حکمت و رہسیہ ہے۔ تو دوستو، آج کے کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
आजकल
दोस्तों कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। स्वाति और सैयद मेसाम का सलाम स्वीकार कीजिए।
किसी भी देश में शोध पत्रों, लेखों, दस्तावेजों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शोधकर्ताओं की गतिविधियों, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं को वैज्ञानिक उत्पाद समझा जाता है। वैज्ञानिक उत्पादों की समीक्षा के लिए जिन मापदंडों को नजर में रखा जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लेखों का प्रकाशन, उद्धरण, पत्रिकाओं की वैधता, वैज्ञानिक उत्पादकता और वैज्ञानिकों का प्रभाव।
इस संबंध में वेब ऑफ साइंस, नेचर इंडेक्स, स्कोपस, इस्लामिक वर्ल्ड साइंस साइटेशन डेटाबेस और रेटिंग सिस्टम जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक, द टाइम्स और साइमागो सहित अनुसंधान और उद्योग आय के क्षेत्र से संबंधित है। इस कार्यक्रम में हम इसी प्रोफाइल पर ईरान की स्थिति की समीक्षा करेंगे।
ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ASPI द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दुनिया की शीर्ष 10 विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाशक्तियों में से एक है। ASPI ने जापान की तुलना में ईरान को उच्च रैंकिंग पर रखा है। 44 प्रौद्योगिकियों में से 6 में ईरान को शीर्ष 5 देशों में रखा गया है और शीर्ष 10 वैश्विक शक्तियों की ओवरऑल रैंकिंग में 9वें स्थान पर रखा गया है। हाइपरसोनिक सहित उन्नत विमान इंजनों में ईरान को चीन और अमेरिका के बाद 4थे स्थान पर रखा गया है और इसने स्पष्ट रूप से जापान, इटली और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है।
ASPI के मुताबिक ईरान जैव ईंधन और स्मार्ट मटेरियल साइंस और मार्केट में उभर रही नई तकनीकों में शीर्ष 4 देशों में शामिल हो गया है जो उद्योग के भविष्य को बदल सकती है। ईरान ने सिंथेटिक जीव विज्ञान में दुनिया भर के प्रकाशनों की कुल संख्या का 2% प्रकाशित किया है जो इसे वैश्विक रैंकिंग में 8वें देश के रूप में चिन्हित करता है। चीन और अमेरिका के बीच जारी प्रतिस्पर्धा के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ईरान ने दमदार प्रदर्शन किया है।
अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों की नवीनतम रैंकिंग की समीक्षा से पता चलता है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान कई वैज्ञानिक संकेतकों में वृद्धि के साथ साथ 2023 में दुनिया में 16वें स्थान पर स्थिर होने में सक्षम रहा है। इन सर्वेक्षणों के अनुसार इस देश में वैज्ञानिक उत्पादन की स्थिति विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त वृद्धि का संकेत देती है।
नेचर इंडेक्स, जिसे देशों की वैज्ञानिक स्थिति के अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में से एक माना जाता है, एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें ऐसे लेखकों की जानकारी होती है जिन्होंने 82 शीर्ष साइंस पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित किए हैं। नेचर इंडेक्स वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता, अनुसंधान, उत्पादन और सहयोग का एक सूचकांक है। इसे हर महीने अपडेट किया जाता है और यह अपनी वेबसाइट पर 12 महीने की अवधि की जानकारी प्रदर्शित करती है।
नेचर इंडेक्स रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में, जिसे 14 मार्च 2023 को अपडेट किया गया था, ईरान पहले 30 देशों में शामिल है। इस बीच ईरान की रैंक 2022 में 32, 2021 में 35 और 2020 में 33 थी। भौतिकी, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और जैविक विज्ञान के 4 सामान्य विषय क्षेत्रों के आधार पर भौतिकी के विषय क्षेत्र में ईरान की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दुनिया में 27वीं है। 95 सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों को नेचर इंडेक्स रैंकिंग में शामिल किया गया है और सभी संस्थाओं में शिराज विश्वविद्यालय 921वें स्थान के साथ ईरान में पहले नंबर पर है।
वेब ऑफ साइंस को दुनिया का सबसे विश्वसनीय और पहला वैज्ञानिक संदर्भ डेटाबेस भी माना जाता है। इस प्रोफाइल की जानकारी का प्रयोग प्रत्येक देश की वैज्ञानिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक के उद्धरण मानदंड और संकेतकों में वैज्ञानिक उत्पादन का हिस्सा, वैज्ञानिक प्रकाशनों की मात्रा, उद्धरणों की मात्रा, उद्धृत लेखों की मात्रा और प्रति लेख उद्धरण शामिल है। इसके अलावा शोधकर्ताओं की संख्या, प्रत्येक देश की अनुसंधान आबादी का प्रतिशत, ज्ञान उत्पादन संस्थाएं, देश में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं की संख्या और प्रतिशत, प्रकाशनों की संख्या और विज्ञान उत्पादन का हिस्सा इस व्यापक सूचकांक में प्रकाशित होता है।
दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित करना किसी भी राष्ट्र के लिए इतना आसान काम नहीं है, खासतौर पर जब उस पर विश्व की बड़ी शक्तियों द्वारा इतिहास के सबसे कड़े और कठोर प्रतिबंध लगे हों। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इस्लामी क्रांति ने बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ सफलता हासिल की है। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने अपनी 44 वर्षीय आयु में कई महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त कर लिया है और बाकी को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है।
ईरान की महान इस्लामी क्रांति की पहली उपलब्धि स्वाधीनता की प्राप्ति और अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भरता की समाप्ति थी। ईरान में इस्लामी क्रांति से पहले एक राजशाही और तानाशाही शासन था जो पूरी तरह से पश्चिम पर निर्भर थी। ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले तक ईरान अमेरिकी सलाहकारों के कब्जे में था, जिनका सरकार पर पूरी तरह से नियंत्रण था। यहां तक कि उच्च अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने के लिए भी अमेरिकियों से इजाजत लेनी पड़ती थी।
इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान की प्रगति का एक स्पष्ट उदाहरण शैक्षणिक संस्थानों की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि का होना है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंचने से पहले साक्षरता में वृद्धि करना जरूरी होता है। इसके बाद उच्च शिक्षा का नंबर आता है, जिसका समाज में काफी महत्व होता है, इसलिए कि समाज के विकास और प्रगति में इसका बुनियादी योगदान होता है। वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जैसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा की भूमिका अहम होती है। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इन सभी क्षेत्रों में एक बड़ी छलांग लगाई है। ISI डेटाबेस के अनुसार ईरान ने हालिया वर्षों में क्षेत्र में पहला वैज्ञानिक और दुनिया में 15वां रैंक प्राप्त किया है।
परमाणु तकनीक के अलावा आज दुनिया में जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा है और प्रगति और विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान है, वह है एरोस्पेस। विश्व प्रसिद्ध फोटोन इंस्टीट्यूट के अनुसार ईरान एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरती शक्तियों में से एक है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के मामले में विश्व में 11वें स्थान पर है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ज्ञान और प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जो पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों के चारों ओर अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए रोबोट और गैर रोबोटिक डेटा का अन्वेषण और अनुसंधान करता है। वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में अंतरिक्ष तकनीक के विस्तार के साथ ही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास पर भी जोर दिया जाता है और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिक्ष धन पैदा करने का एक अवसर है और यह रोजगार सृजन में भी प्रभावी हो सकता है और इसी आधार पर विभिन्न देशों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास के प्रयास किए हैं और ईरान भी अपने शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के प्रयासों से दुनिया में एक अच्छे स्थान पर पहुंच गया है।
आज ईरान के 14 विश्वविद्यालयों में एरोस्पेस का विषय पढ़ाया जाता है, जिसमें 250 से अधिक फैकल्टी विभिन्न विभागों और कॉलेजों में सक्रिय हैं। 4000 स्नातक अब तक इस विषय में डिग्री ले चुके हैं। शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की तरह ही ईरान के दुश्मनों ने एरोस्पेस के क्षेत्र में भी देश के सामने रुकावटें खड़ी करने के लिए ईरानोफोबिया का जमकर प्रचार किया है और झूठ फैलाया है। वे एरोस्पेस के क्षेत्र में भी ईरान पर सैन्यकरण का आरोप लगा रहे हैं और ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि एरोस्पेस में प्रगति का ईरान का उद्देश्य अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाना है।
पिछले एक दशक के दौरान ईरान ने कई सैटेलाइट लॉन्चर अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं और कई छोटे उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है, जिसकी अमेरिकी एयरोस्पेस संस्थाओं ने पुष्टि की है। ईरान पहला मुस्लिम देश है जिसने इतनी महान सफलता हासिल की है। संचार के युग में एयरोस्पेस के क्षेत्र की उपलब्धियों का अधिकांश औद्योगिकी देश ध्यान देते हैं। परमाणु तकनीक, सफल मिसाइल कार्यक्रम और दूरसंचार उद्योग में विस्तार, ऑटोमोबाइल, स्टील उद्योग, तेल और गैस और पेट्रोकेमिकल उद्योग आदि का विकास यह दर्शाता है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान ने विश्व के विकसित देशों के क्लब में प्रवेश कर लिया है।
आज इस्लामी गणतंत्र ईरान जैसे देश ने अपनी मूल्यवान और महान इस्लामी क्रांति के चार दशक के बाद न सिर्फ कई महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी हासिल की है, बल्कि विश्व स्तर पर आधुनिकतम तकनीक अर्थात संचार, एरोस्पेस और मिसाइल जैसे क्षेत्रों में खुद को स्थापित कर लिया है। ईरान ने काफी कम समय में कई छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं। प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और नुकसान से बचने के लिए सैटेलाइट इमेजेस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खनिजों की खोज, जलवायु परिवर्तन, वन चरागाहों, महासागर और अन्य क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। संचार डेटा ट्रांसमिशन और इमेजेस के लिए उपग्रहों के उपयोग से मानव जीवन में काफी परिवर्तन हुआ है। दुनिया भर से लाइव टेलीविजन और टेलीफोन संचार तकनीक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास की ही देन है। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अब हमें इजाजत दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले की पैरवी जारी रहेगी। फिलिस्तीनियों और इसराइल के बीच तनाव बढ़ गया है और फिलिस्तीनियों ने कई मिसाइल इसराइल की ओर फायर किए हैं। भारत के कर्नाटक राज्य का चुनाव संपन्न हो गया है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कई क्षेत्रों में अशांति है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.